أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلائق أجمعين أما بعد محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ہمارا پچھلا پروگرام جو تھا اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں مادی آوازیں اور وہ آوازیں کہ جنہیں ذرا کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتایا اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ 9+2 9 بہ اضافہ 2 11 علامتیں ہیں جس میں تین سب سے بیسک اور بنیادی علامتیں ہیں ا ای او ا یعنی فتحہ ای یعنی کسرہ او یعنی ضمہ ان کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا ہے بہت سمپلی جیسے ہندی میں ا ای او ہوتا ہے ویسے اس کے بعد کے دوسرے مرحلے کی جو آواز ہیں وہ مادی آوازیں آ ای او انہیں ذرا کھینچ کر ادا کرنا ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک اہم فرق بھی بتایا تھا کہ وہ جو پہلی تین بنیادی علامتیں ہیں ا ای او وہ کیپٹل اور اسمال دونوں حروف پہ آتی ہیں لیکن آ ای اور او کی جو آواز ہے وہ صرف اسمال لیٹر یعنی چھوٹے حروف پر وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں آج کے سبق میں آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں جو بقی علامتیں ان کو پیش کریں گے ان میں سب سے پہلے ہے عنوان ہمارے آج کے درس کا تنوین آج کے پروگرام کا تنوین ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تنوین کی تعریف کیا ہے تنوین دراصل ایک نون ہے کہ جو پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے تنوین کی ڈیفینیشن اگر آپ سے کوئی پوچھے تنوین کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے ایک ایسا نون کہ جو پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا ہے عربی میں تنوین کی گرچہ تین طرح کی تنوینیں ہیں کیا ہے ان 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 ہم لوگ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو الف دو زبر ان الف دو زیر ان الف دو پیش ان یعنی دو پیش ہو تو ان دو زیر ہو تو ان دو زبر ہو تو ان کی آواز ہوگی لیکن تنویر کو عام طور سے دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے کچھ یعنی دو تنوینیں ان اور ان یہ وہ تنوینیں ہیں کہ جو کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر دونوں ہی حروف پہ آتی ہیں لیکن ان کی جو تنوین ہے یہ صرف و صرف اسمال لیٹر پہ آتی ہے تنوین کی ایک اور خاصیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں یعنی جو ورڈ ہوتا ہے اس کے آخری حرف پہ تنوین لگتی ہے تنوین پہلے حرف پہ نہیں لگتی تنوین درمیانی حرف پہ نہیں لگتی تنوین ہمیشہ عربی میں آخری حرف پہ آتی ہے تنوین کی دو قسمیں ہیں یعنی تنوین تین طرح کی تنوینیں ہیں جن کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے ان 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 میں ان اور ان کی جو تنوین ہے یہ اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر چھوٹے حروف اور بڑے حروف دونوں ہی پہ یہ تنوین نمایاں ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے اور ان پہ لگائی جاتی ہے لیکن ان کی جو تنوین ہے وہ صرف اور صرف اسمال لیٹر اور چھوٹے حروف پہ لگائی جاتی ہے ان کا طریقہ بہت سمپل ہے آپ دیکھیں یہاں جو میں نے الف سے لے کے یہ تک لکھا ہے جو لال علامتوں سے پیش لکھا اور زیر لکھا ہے یعنی فتح ضمہ اور کسرہ پیش کے ساتھ ہم ضمے کے ساتھ جب الف سے لے کے ہم یہ تک پڑھیں گے تو اس کی آواز کیا ہوگی او بو تو سو جو ہو خو دو ذو رو زو یو اس پیش کے اوپر ہم ایک اور پیش لگا دیں اگر جس کو عام طور سے الٹا پیش کی شکل میں لکھا جاتا ہے دیکھیں یعنی پیش کے اوپر ایک اور الٹا پیش یا وہ سیدھا لکھا ہو یا الٹا لکھا ہو یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے اگر دو پیش ایک جگہ ایک ساتھ ہوں تو ان کی آواز کیا ہوگی او سے آواز ان میں بدل جائے گی او سے آواز کس چیز میں بدل جائے گی ان میں کہیں بھی ہم نے کسی بھی لیٹر کسی بھی حرف کے اوپر اگر ہم نے دو پیش ایک ساتھ دیکھا تو اس کی آواز او سے کہے میں بدل جائے گی ان میں بدل جائے گی او سے آواز ان میں بدل جائے گی ان بن تن سن جن اب آپ دیکھیں میں نے کہا تھا نا تنوین ایک نون ہے جو پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے تو یہاں تنوین ہے اس میں نون پڑھا جا رہا ہے لیکن اس نون کو لکھتے نہیں ہیں ان بن یعنی جب ہم ان پڑھیں گے تو دراصل یہ یوں ہوگا لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں اس نون کو نہیں لکھتے ہیں بلکہ ہم یہ اس طرح لکھتے ہیں یعنی الف کے اوپر پیش اس کے اوپر ایک اور پیش ہو جاتی ہے آواز ان بن تن سن جن یون اچھا زیر کی آواز کیا ہے ای بی تی سی جی ہی خی دی ری یی زیر کے نیچے ایک اور زیر ہم اگر لگا دیں یعنی دو زیر اگر آ جائے تو ای سے آواز بدل جائے گی ان इन बिन तिन सिन जिन हिन खिन दिन दिन रिन जिन सिन शिन सिन यिन। आखिरी हर्फ तक अब आप ये खुद से लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपके हाथ में कानून आ गया है। ज़ेर के नीचे एक और ज़ेर आ जाए यानी दो ज़ेर आ जाए तो ई से आवाज़ इन में बदल जाएगी। पेश के ऊपर एक और पेश आ जाए यानी दो पेश आ जाए तो ऊ से आवाज़ उन में बदल जाएगी। ये कानून। अच्छा, अब आप यहाँ गौर कीजिए, हमने आ की आवाज़ ई की आवाज़ को इन में बदला, ऊ की आवाज़ को उन में बदला, तो सिंपली उसके ऊ के ऊपर एक और पेश लगाया तो उन हो गई, ई के नीचे एक और ज़ेर लगाया तो आवाज़ इन हो गई। लेकिन हम जब ये दो ज़बर वाली तनवीन है इसको जब हम लिखेंगे तो इसमें सिर्फ एक जब आप कायदतन तो ये होना चाहिए कि एक ज़बर का हमने इजाफा कर दिया, आवाज़ आ से अन बन जाए, अन बन तन सन जन हन खन दन जन रन जन सन शन सन यन। होना तो यही चाहिए कि एक ज़बर का हम इजाफा कर दें, आ से आवाज़ अन में बदल जाएगी। लेकिन नहीं, अरबी कायदे के मुताबिक हम यहाँ ज़बर के साथ साथ एक अलिफ़ का भी इजाफा करेंगे जो आ से आवाज़ यानी ज़बर और अलिफ दोनों, अन बन तन सन जन हन खन, मिसाल के तौर पर सन यन। यानी दो ज़बर वाली तनवीन बनाने के लिए हमें एक ज़बर के साथ साथ एक अलिफ का भी इजाफा करना होगा। उसकी वजह क्या है वो अभी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो यहाँ तक बात आपके लिए वाज़े हो गई, ऊ को अगर उन में बदलना है तो एक पेश लगाएंगे, ई को अगर इन में बदलना है तो एक ज़ेर लगाएंगे, लेकिन अ को अगर अन में बदलना है तो एक ज़बर लगाएंगे, उसके साथ साथ एक अलिफ का भी इजाफा करेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहाँ अलिफ का इजाफा नहीं होगा, वो कौन सी जगह वो अभी आपको बताते चलें। अगर कोई अरबी में लफ्ज़ ऐसे गोल वाले ते पे ख़त्म हो रहा है या इस वाले ते पे ख़त्म हो रहा है, इसको बताने के लिए अलबत्ता मुझे एक और बात बतानी होगी, वो अभी मेरे ख्याल से मौका भी है मैं बताता भी चलूँ। यहाँ तक बात वाज़े हो गई आपके लिए। मैंने आपको अर्ज़ किया था, आपकी खिदमत में बताया था कि कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी मुतअद्दिद शक्लें हैं, उनमें से एक मैंने मीम बताया, ऐन गैन बताया। एक हर्फ के जिसकी मुतअद्दिद शक्लें हैं उनमें से एक हर्फ है हे। हे को मुतअद्दिद सूरतों में लिखा जाता है, हे कभी इस तरह भी लिखा जाता है, इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, कभी इस तरह भी लिखा जाता है, कभी इस तरह भी लिखा जाता है। ये शक्ल हे की मुतअद्दिद सूरतें हैं, कभी हे को इस तरह भी लिखते हैं। ये हे की सूरतें हैं, हे की मुतअद्दिद शक्लें हैं। अगर हे इस शक्ल में आया हो और इस शक्ल में आया हो, मिसाल के तौर पे, यानी ये दरहकीकत जब इस पे दो नुक्ते आ जाते हैं हे के ऊपर, तो फिर ये हे नहीं ते कहलाता है, इसको ते पढ़ते हैं। जब भी इस हे के ऊपर दो नुक्ते आ जाएँ तो वो ते पढ़ा जाएगा, हे नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसी ते पे अगर दो ज़बर आ जाए तो वो दो ज़बर अलिफ के बग़ैर लिखा जाएगा। तो कायदा कानून क्या है, जब भी हम आ की आवाज़ को अन में बदलना चाहते हैं तो हम ज़बर के साथ साथ अलिफ का भी इजाफा करेंगे। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ ऐसी ते पे ख़त्म होता है, जैसे मिसाल आपको दें, ऐसा लफ्ज़ जो इस ते पे ख़त्म होता है, अब देखें यहाँ रहमतन, इस ते पे सिर्फ दो ज़बर है लेकिन अलिफ का इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि कायदा यह है कि अलिफ का इजाफा होना चाहिए, लेकिन ये इस कायदे से मुस्तस्ना है, ये इस कायदे से अलग है। तो ये तीन आवाज़ें भी तनवीन की मैंने आपको बता दी। अब कुरानी एग्जांपल पेश करूँगा, उसके बाद दो अलामतें और चंद अहम नुकात पेश करेंगे आपकी खिदमत में। यहाँ तक यकीनन आपके लिए बात वाज़े हो चुकी होगी कि तनवीन उस नून को कहते हैं जो पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता है। ये तीन तरह की तनवीनें हैं, उन इन अन। उन और इन कैपिटल और स्मॉल दोनों पे आती हैं, लेकिन इन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल पे आती है। तनवीन की एक और ख़ासियत ये है कि तनवीन हमेशा हर्फ के आखिर में आती है, इब्तिदा या बीच में नहीं आती है। और अलिफ का इजाफा अन के साथ होता है, वो क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे। अब आप कुरानी मिसालों की तरफ तवज्जो कीजिए। रसूलिन, ये दो जेर वाली तनवीन है, दो जेर वाली तनवीन रसूलिन। आलिमुन 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 आलिमुन। अबसन आबसन। मिसालों को मैंने कहा कि हत्ता कुरान मजीद की जब आप तिलावत शुरू करें तो आप इसी तरह तोड़ तोड़ के हर हर्फ को अलग अलग पढ़ेंगे। रसूलिन आलिमुन आबसन। अब आपको हम ये बताते चलें कि यहाँ अलिफ का इजाफा क्यों है और यहाँ इजाफा क्यों नहीं है। देखिए कायदे के मुताबिक अरबी में कायदा यह है कि जब भी हम किसी हर्फ पर पॉज लेते हैं, रुकते हैं, तो आखिरी की जो भी अलामतें हैं वो हट जाती हैं। मिसाल के तौर पे रसूलिन अरबी में अगर हम इसमें जैसे हमारी सांस यानी रुक गई, या मिसाल के तौर पे स्टैमिना हमारा कम हुआ, पढ़ते पढ़ते सांस फूलने लगी, हम रुकना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रसूलिन को रसूली नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे रसूल, यानी हम इसको आखिर में साकिन कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। आलिमुन को जब हम इस पर रुकेंगे तो आलिम हम आखिर में साइलेंट कर देंगे, लेकिन आबसन जिस पे दो ज़बर है जब इस पे हम रुकेंगे तो हम इसको साइलेंट नहीं करेंगे बल्कि हम इसका एक फ़तहा यहाँ से हटा देंगे और एक फ़तहा इसका बाकी रहेगा, यानी ये क्या बन जाएगा, आबसन बन जाएगा आबसा आबसा, यानी अन की आवाज़ आ में बदल जाएगी, इसलिए यहाँ एक अलिफ का इजाफा किया है। लेकिन इन दोनों में उन और इन में उनमें भी हम क्या नाम है उसको साइलेंट कर देंगे, इन में भी हम इसको साइलेंट कर देंगे और इसकी आवाज़ हम इसको आखिरी हर्फ पे जो अलामत है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अन में आखिरी हर्फ की अलामत को पढ़ा जाता है, लेकिन अन नहीं पढ़ा जाता बल्कि इसके एक ज़बर को गिरा दिया जाता है। एक और इस्तिस्ना आपको बताते चलें, आपने अभी रहमतन की मिसाल में सुना था, क्या सुना था कि इस पे अलिफ का इजाफा नहीं होता। अगर इस ते पे दो ज़बर लगा हो या दो ज़ेर लगा हो या दो पेश लगा हो, अगर हम इस पे रुकना चाहते हैं तो ये ते जो है इसकी अलामत को भी हम हटाएंगे, यानी दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश, दो ज़ेर को भी हम हटाएंगे, दो पेश को भी हम हटाएंगे, दो ज़बर को भी हम हटाएंगे। उसको हटाने के साथ साथ एक और काम ये करेंगे, इस ते के नुक्ते को भी हम हटा देंगे, ये बदल जाएगा हे में, रहमतन रहमतिन रहमतुन हो जाएगा रहमा, इसको हम हे में बदल देंगे रहमा, और ये साइलेंट हे होगा, साकिन हे होगा। साकिन हे क्या होता है, सुकून क्या होता है, ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो यहाँ तक तनवीन के सिलसिले में जो बात थी वो आपकी खिदमत में वाज़े हो गई। दूसरी दो अलामतें जो बहुत सिंपल हैं उन पे ज़रा सा गौर कीजिएगा। पेश जब हम लिखते हैं अरबी में तो इसका मुंह बंद होता है, लेकिन हम इसी पेश का जब मुंह खोलेंगे तो उसकी अलामत हो जाएगी सुकून जैसी, वो अलामत हो जाती है साकिन की। जब हम पेश को लिखते हैं तो उसका मुंह बंद होता है, जब वो मुंह खोल के हम लिखेंगे तो वो सुकून की अलामत हो जाएगी। सुकून की एक ऐसी अलामत है, ये जिस हर्फ पे भी लगी हो ये अलामत उस हर्फ को कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं, साकिन। वो हर्फ के जिस पे, वो लेटर के जिस पे सुकून की अलामत लगी उसको साकिन कहते हैं। इस अलामत की खासियत क्या है, इस अलामत की खासियत ये है कि अगर किसी हर्फ के ऊपर ये अलामत आ जाए तो उस हर्फ की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, बल्कि उस हर्फ से पहले वाला हर्फ या उससे कबल का हर्फ, उस पे जो भी अलामत लगी होगी उस अलामत के साथ उसको मिला के पढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल, ये अलिफ के नीचे क्या है, ज़ेर यानी कसरा ई की आवाज़ होगी, लेकिन इसके बाद नून, नून के ऊपर है सुकून की अलामत, यानी हम सुकून की अलामत का मतलब क्या है, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, अपना कोई इसका साउंड नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है। इसका मतलब ये कि हम इस आवाज़ को यहाँ इस नून से मिलाएंगे, ई एन, ई एन, या अब मीम के नीचे है जेर कसरा मी, इसकी आवाज होगी मी, लेकिन नून के ऊपर है सुकून यानी नून है साकिन, तो हम नून की, मीम की आवाज को नून से मिलाएंगे, मी मेन, मी मेन। लाम के ऊपर है फतहा, हम लाम की आवाज को नून से मिलाएंगे, ल लम, ल लम। काफ के ऊपर है पेश, उसके बाद नून, नून के ऊपर है साकिन, हम काफ की आवाज को नून से मिलाएंगे, क्या होगा, कुन, कु कुन, कु कुन। कहने का क्या मकसद है, तन सुकून वो अलामत है कि जिसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, वो जिस हर्फ पे आ जाए वो हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ा जाता है, या अगर उससे पहले वाले हर्फ पे अलामत नहीं हो तो उससे पहले हम देखेंगे, जिस हर्फ पे अलामत हो उससे हम उसको मिलाकर पढ़ेंगे। अगर ये सुकून समझ में आ गया तो इसके बाद तजदीद को समझना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। आप ज़रा सी तवज्जो करें, तजदीद भी बिल्कुल सिंपल है और बहुत वाज़े इसकी एग्ज़ाम्पल है, जो बिल्कुल सुकून का, सुकून गोया उसका मुकदमा है। तजदीद एक अलामत है जो बिल्कुल छोटा सा डब्लू होता है, मिनी डब्लू की शक्ल में वो हर्फ के ऊपर लिखी जाती है। इसके डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, तजदीद एक ऐसी अलामत है जो अगर किसी हर्फ पे आ जाए तो वो हर्फ दो बार पढ़ा जाता है, एक बार अपने पहले यानी पहले अपने से पहले वाले हर्फ की आवाज़ से, उसके बाद फिर अपनी आवाज़ से पढ़ा जाता है। तो तजदीद एक ऐसी अलामत है कि जो अगर किसी हर्फ पे आ जाए वो ट्वाइस यानी दो बार पढ़ी जाती है, पहले अपने से पहले वाले हर्फ की अलामत से मिलाकर पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद अपनी आवाज़ से पढ़ी जाती है। आप देखें एग्जाम्पल, अब यहाँ हमने क्या लिखा है, ई न, इस मिसाल में आप देखें हमने क्या लिखा, इन ना, इन ना, यहां हमने लिखा ए ना, यानी बीच का नून नहीं लिखा है, इस बीच के नून की जगह हम यहां एक अलामत दे देंगे तजदीद की, तो ये हो जाएगा इन ना। तजदीद एक ऐसी अलामत है कि जो किसी हर्फ पे आ जाए तो वो दो बार पढ़ा जाता है, पहले अपने पहले वाले हर्फ की आवाज से, फिर उसके बाद अपनी आवाज से पढ़ा जाता है, इन ना, इन ना। या दूसरी एग्जाम्पल देखें आप, अब यहां मीम पे तजदीद है, उसके बाद अलिफ है, मीम पहले लाम की आवाज से पढ़ा जाएगा, लम, उसके बाद अपनी आवाज से पढ़ा जाएगा, मा, मा अलिफ है तो लम मा, लम मा। तो तजदीद की आवाज क्या हुई, तजदीद वो अलामत है कि जो किसी हर्फ पे आ जाए तो वो गोया दो मरतबा पढ़ा जाता है, पहले अपने से पहले वाले हर्फ की आवाज़ से और फिर उसके बाद अपने से बाद वाले हर्फ की आवाज़ से। यहाँ एक बात और आखिरी बात बताता चलूँ इस सिलसिले की, मैंने अर्ज़ किया था कि वो हरूफ के जिनकी मुतअद्दिद शक्लें, उनमें से एक काफ भी है, काफ का एक सिंपल काफ की सूरत तो ये है, और दूसरी सूरत जो काफ की है, जो दूसरी शक्ल में लिखा जाता है काफ, वो इस तरह भी काफ को लिखते हैं, इस तरह भी काफ को लिखते हैं, इस तरह भी काफ को लिखा जाता है। काफ की मुतअद्दिद सूरतें हैं, लिहाजा इन अलामतों की तरफ आप तवज्जो कीजिएगा, और मुख्तलिफ हरूफ जो स्मॉल लेटर हैं जिनकी शक्ल बदलती रहती उनकी तरफ भी आप तवज्जो करें। ये जो बेसिक बातें आपको बताई गई हैं, क्या क्या बताए गए हैं हरूफ दो तरह के होते हैं। अरबिक में हरूफ जो हैं वो 29 हैं उनकी तादाद, और उनका नाम उन्हें हरूफ को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। 28 है उनकी तादाद, 29 भी बाज़ लोग कहते हैं। अरबिक हरूफ को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। और हरूफ दो तरह के हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। और हरूफ में दो अहम चीज़ें, एक उनका नाम और एक उनकी आवाज़। जो हरूफ नाम से पढ़े जाते हैं कुरान मजीद में उनको हरूफ मुकत्तआत कहते हैं, और जो हरूफ अपनी आवाज़ से पढ़े जाते हैं वो सिंपल पूरा कुरान मजीद हरूफ की आवाज़ से पढ़ा जाता है। मैंने अर्ज़ किया कि अरबी हरूफ की खासियत बनिस्बत दूसरी ज़बानों की ये है कि अरबी हरूफ गूंगे हैं, साउंडलेस हैं, इनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। इनकी आवाज़ को नुमाया करने के लिए हमें 9 + 2 = 11 अलामतों का सहारा लेना होगा। जब तक ये 11 अलामतें नहीं होंगी उस वक्त तक कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जा सकती है। उनमें 11 अलामतों में 3 अलामतें सबसे बेसिक हैं, उसके बाद 6 अलामतें वो उस आवाज़ हैं, और 2 अलामतें दर हकीकत अपने आप में कोई आवाज़ नहीं है बल्कि दूसरी आवाज़ों को मिलाने के लिए उन अलामतों से इस्तेफादा किया जाता है। अ ई उ बेसिक, आ ई उ मध्य आवाज़ है, फिर उसके बाद तनवीन, इन उन अन, यानी उन इन अन, अन इन उन। तनवीन में मैंने बताया एक नून है जो पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। तनवीन दो तरह की है, दो तनवीनें ऐसी हैं जो कैपिटल और स्मॉल दोनों पे आती हैं, और एक तनवीन ऐसी है कि जो सिर्फ स्मॉल पे आती है। और उसके बाद तजदीद और सुकून। सुकून वो अलामत है कि जो किसी हर्फ पे आ जाए तो वो अपने से पहले वाले हर्फ की आवाज़ से मिला के पढ़ा जाता है। तजदीद वो अलामत है कि जो अगर किसी हर्फ पे आ जाए तो वो दो बार पढ़ा जाता है वो हर्फ, पहले अपने से पहले वाले हर्फ की आवाज़ से और उसके बाद अपनी आवाज़ से पढ़ा जाता है वो हर्फ। ये बेसिक उसूल हैं कुरान मजीद की तिलावत के। अब कुछ पंक्चुएशंस हैं कुरान मजीद के, उन पंक्चुएशंस को अगर कोई जान लेता है तो कुरान मजीद की बेसिक सिर्फ 5 पंक्चुएशंस हैं, वो मैं सिर्फ सरसरी तौर पे आपकी खिदमत में उनका नाम गोया उनको सिर्फ अलामतों को पेश कर दे रहा हूँ। वो पंक्चुएशंस अगर आप जान लें तो फिर पंक्चुएशंस आप जानते हैं किस चीज़ को कहा जाता है। पंक्चुएशन दरअसल में अंग्रेज़ी में अगर पंक्चुएशंस को इस्तेमाल किया जाता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ मिलाकर पढ़ना है, कहाँ किस तरह, यानी टेक्स्ट की क़राअत किस तरह हो, इसके लिए हम पंक्चुएशंस का सहारा लेते हैं और पंक्चुएशंस की मदद लेते हैं। पंक्चुएशंस की मदद के ज़रिए हम इबारतों को सही पढ़ने में हमें मदद मिलती है अगर हम पंक्चुएशंस का सहारा लेते हैं। सबसे पहले यानी जो रुमूज़ व अक़ाब भी जिनको यानी वक्फ़ के जो रुमूज़ हैं, सबसे पहले एक मीम छोटा सा होता है जिसको कहते हैं लाजिम, वक्फ़ लाजिम, इसमें रुकना वाजिब होता है। उसके बाद छोटा सा तोय होता है वक्फ़ मुतलक, उसके बाद ला यानी ला तकिफ, ना रुकना, अदम वक्फ लाम, जायज, रुखसत, ये चंद अलामतें हैं। या मिसाल के तौर पे एक और अलामत, ये गोया 5 और 6 अलामतें जिनमें से अगर हम इसको हटा भी दें तो बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। ये 5 अलामतें सबसे ज़्यादा बेसिक हैं। वक्फ़ लाजिम, ये एक छोटा सा मीम होता है, अक्सर बाज़ सूरह बकरा की तकरीबन पहली लाइन में मेरे ख़्याल से ये अलामत है वक्फ़ लाजिम, छोटा सा मीम होता है। इस पर रुकना ज़रूरी है, पॉज लेना ज़रूरी है। अगर हम मिला के पढ़ें तो हो सकता है मफहूम उसका बदल जाए, आयत का यकीनन आयत का मफहूम बदल सकता है। वक्फ़ मुतलक, इस पर रुकना बेहतर है और यानी ज़्यादा तरजीह दी जाती है इसके रुकने के ऊपर। लाम ला तकिफ का मतलब यानी यहाँ ना रुकना बेहतर है, बेहतर क्या बल्कि ना रुकना ज़रूरी है। जैसे यहाँ रुकना ज़रूरी है मीम में, ला तकिफ में यहाँ ना रुकना ज़रूरी है। जीम की अलामत यानी जायज़ है, हम रुक सकते हैं, ये अलामत जो है ये भी सूरह बकरा में पाई जाती है, इब्तदाई पहले सफ़े में मेरे ख्याल से है, वक्फ मुआनिका। ये अलामत अगर एक आयत के बीच में दो जगह आ जाए तो हमको किसी एक पे रुकना है, या इसके ऊपर या इसके, अगर हम पहली पे रुके तो हम दूसरी पे नहीं रुकेंगे, अगर हम पहली पे नहीं रुके तो हमें दूसरे के ऊपर रुकना ज़रूरी है। इसको वक्फ़े मुआनिका कहते हैं। ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, अलामतें हैं पंक्चुएशंस की। ये दरहकीकत हमें, क्योंकि हम अरबी ज़बान से आशना नहीं है, उसके टेक्स्ट से, उसके मत के मफहूम से अब आशना नहीं है, तो हमें कहाँ रुकना है और कहाँ मिलाकर पढ़ना है, यह हमें नहीं। अक्सर होता है ऐसा, हम जब हदीस किस्सा या दुआएँ दूसरी पढ़ते हैं तो हम उसको, क्योंकि हमें नहीं मालूम कहाँ वक्फ करना है, कहाँ मिलाकर पढ़ना है, हम उसके मफहूम से आशना नहीं है, तो हम बस उसको अपनी रौ में पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये अलामतें जो हैं कुरान मजीद में तो हैं, वो दुआओं में नहीं होती हैं, बाज़ किताबों में, बाज़ लोगों ने दुआओं की किताबों में भी या हदीस किस्सा वगैरह में भी अलामतें लगा दी हैं ताकि हमें मालूम हो सके हम कहाँ रुकते हैं कहाँ नहीं रुकते हैं। तो इन अलामतों का लिहाज करना ज़रूरी है। ये बेसिक अलामतें हैं। ये जो चंद बातें थीं ये गोया वो बुनियादी बेसिक बातें हैं कि एक शख्स अगर इनको जान ले तो वो कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ कर सकता है। अब इन बातों को फॉलो करने के बाद आप ख़ुद अपना इम्तहान लीजिए, अपना जायज़ा लीजिए, कुरान मजीद खोलिए और देखिए आप कितने फ़ीसद कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है इस बात का कि अगर इस नहज की अगर कोई गोया इस नहज पे अगर कोई सीख ले और समझ ले इस नहज को अगर, तो उसके लिए कुरान मजीद की तिलावत करना कोई सख्त काम नहीं होगा। हाँ, सबसे ज़्यादा तवज्जो हरूफ की आवाज़, हरूफ की शनाख्त, उनके नाम की शनाख्त, ये ज़रूरी है। और अलामतों को सही से गौर से देखना, कहाँ अलिफ है, कहाँ फतहा है, कहाँ यानी ज़बर ज़ेर पेश, कहाँ दो ज़बर, कहाँ दो ज़ेर, कहाँ दो पेश, ये सारी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी जुज़ी बातें हैं, जब आप पढ़ने लगेंगे और तिलावत करते रहेंगे तो यकीनन आपको ज़रूरत का एहसास होगा कि मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे ये सीखना चाहिए, तो उस वक्त ख़ुद आप तलाश करेंगे। बहुत से माहरीन उलमा और मसलन कुरान मजीद के माहरीन हैं कि जिनसे आप इस सिलसिले में मदद ले सकते हैं। बारगाह खुदा में दुआ है कि खुदाया हमारी इस हकीर सी कोशिश और काविश को कबूल करें, हमें तौफीक अता करें कि इस नहज पर हम कुरान मजीद को सीख सकें, उसकी तिलावत कर सकें। और यकीनन तिलावत असल मकसद नहीं है, बल्कि तिलावत के बाद आयात को समझना, आयात के मफहूम से आशना होना, वो असल मकसद है। तो ये कुरान मजीद की तिलावत को सीखना उस आला मकसद तक पहुँचने का मुकद्दमा मद है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।